Medical Wing of Brahma Kumaris presents Empowering Medical Minds.
Om Shanti. I would like to extend a warm welcome to all of you in today's session, Crack the Success Code. Success. हर किसी को चाहिए अपने जीवन में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ की बात हो, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स या स्टूडेंट लाइफ हो। हम सब सपने देखते हैं सफल होने के। सफल शब्द को ही अगर हम देखें तो स प्लस फल अर्थात फल सहित जो हमने अपने लिए तय किया उसको प्राप्त करना। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग सपने तो देखते हैं लेकिन थोड़े से लोग ही होते हैं जो वास्तव में जो पाना चाहते हैं वो पा पाते हैं, जिनको हम रियल मायने में सक्सेसफुल कह सकते हैं। तो क्या उनके पास कोई सफलता की चाबी है या उनके पास कोई कोड है जिसको डिकोड करके वो सफलता प्राप्त करते हैं, या कोई उनके लाइफ के अलग डिसिप्लिन्स हैं? क्या वो बातें हैं, आज के इस सेशन में हम उसको गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। मान लीजिए दो दोस्त हैं और उनको एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है, तो आपको क्या लगता है चोटी तक पहुंचने के लिए उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज की जरूरत होगी? सोचिए जरा। हो सकता है आपके मन में आए कि माउंटेन पर चढ़ने के लिए जो राइट इक्विपमेंट्स हैं वो चाहिए होंगे, या आपस में उनका टीम वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, या ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, या वेदर कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, या माउंटेन पर चढ़ने के लिए उनको एक अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है। आप वैसे जो भी सोच रहे हैं सही ही सोच रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता इन सबसे पहले उनको एक माउंटेन की जरूरत होगी जिस पर वो चढ़ेंगे? जी हाँ, आप मेरा इशारा समझ गए। हम स्किल्स कितनी भी सीख लें लेकिन अगर हमारा लक्ष्य ही हमको क्लियर नहीं है कि हमको पाना क्या है, हमको करना क्या है, तो हमारी सारी मेंटल एनर्जीज, हमारी फिजिकल एनर्जीज सब वेस्ट जाती हैं। तो इसलिए अपना गोल जो है वो बड़ी क्लैरिटी से हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है, जिससे कि हम अपनी एनर्जी को, अपनी फिजिकल स्किल्स को और अपनी मेहनत को एक सही दिशा दे सकें, चैनलाइज कर सकें, जिससे कि हमारे लिए सक्सेस पाना इजी हो जाए। तो अपने जीवन का लक्ष्य जरूर क्लियर रखें। वो जीवन के लक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो ये मतलब नहीं कि हम 10 साल बाद या 15 साल बाद अपने आप को कैसा देखते हैं, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ मेरे इस साल का लक्ष्य क्या है, मेरे इस महीने का लक्ष्य क्या है, मेरे आज के दिन का या इस हफ्ते का क्या लक्ष्य है। और मैं तो ये भी कहूंगी कि आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, इस सेशन को अटेंड करने का लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ किसी ने कहा, उनके कहने पर हम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, या हमारा वास्तव में कोई एम है इसको अटेंड करने का? जब आप एम रखेंगे तो आप अपने लक्ष्य को पा भी सकेंगे, राइट? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम जहां भी अपनी एनर्जी और टाइम स्पेंड करते हैं उसके लिए हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है स्किल्स सीखने की, चाहे वो फिजिकल स्किल्स हो या इंटेलेक्चुअल स्किल्स हो या हमारे प्रोफेशनल स्किल्स हो, वो तो हमको जरूर सीखना ही है। लेकिन आज मैं उन स्किल्स की बात नहीं करूंगी क्योंकि वो तो आप उसमें ट्रेनिंग निरंतर ले ही रहे हैं, लेते भी रहेंगे। आज मैं उन स्किल्स की बात करूंगी जिनको मोस्ट ऑफ द टाइम हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज के समय में, आज के सिनेरियो में जहां पर इतने चैलेंजेस हैं लाइफ में, कभी भी कहीं से भी कोई भी सिचुएशन निकल आती है और जहां पे कई बार हमारे सारे स्किल्स फेल हो जाते हैं। क्या किसी ने कभी सोचा था 22 मार्च को कि एक दिन का जनता कर्फ्यू जो है वो इतना लंबा लॉकडाउन हो जाएगा कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज में, अपने कॉलेजेस में, अपनी शॉप्स पे, फैक्ट्रीज में इतने लंबे समय तक के लिए नहीं जा पाएंगे? किसी ने नहीं सोचा था। तो अचानक से कभी भी कैसी भी सिचुएशंस आ जाती हैं और कई बार हम उसमें ऐसे अपने आप को महसूस करते हैं कि अब क्या करें। तो ये तो एक छोटा सा आज हमारे सामने चैलेंज आया, लेकिन आने वाले टाइम में शायद चैलेंजेस इससे भी बड़े आएंगे। तो ऐसे में बाकी सारी स्किल्स के साथ जो जरूरत है वो है स्पिरिचुअल स्किल्स की। तो आज के सेशन में मैं उन्हीं स्किल्स को बढ़ाने की बात करूंगी। तो समझते हैं कि क्या है स्पिरिचुअल स्किल्स, क्या है इनकी इम्पोर्टेंस आज की लाइफ में। एक छोटे से एग्जाम्पल से मान लीजिए कि एक वुडन ब्लॉक है 20 feet लॉन्ग एंड 2 feet वाइड, और वो मैं वुडन ब्लॉक लकड़ी का फट्टा जमीन पर रख देती हूँ और आपसे कहती हूँ कि आपको एक एंड से दूसरे एंड तक चलकर जाना है इस फट्टे के ऊपर, तो क्या आप कर पाएंगे? आई एम श्योर आप कर पाएंगे। बहुत इजी तो है, 2 feet चौड़ा फट्टा है जमीन पर रखा है और 20 feet ही तो लंबा है, आराम से चल पाएंगे। लेकिन मान लीजिए वही वुडन ब्लॉक मैं 2 stools के ऊपर रख देती हूँ एंड टू एंड, और स्टूल्स की हाइट है 3 feet, और तब मैं आपसे कहती हूँ कि आपको एक एंड से चलकर दूसरे एंड तक पहुंचना है, तो क्या तब भी आप उतना ही कंफर्टेबली चल पाएंगे? आई एम श्योर चल तो पाएंगे, ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और मान लीजिए अब तीसरी सिचुएशन ये है कि उस वुडन ब्लॉक को मैं 2 20-story बिल्डिंग्स के बीच में लगा देती हूँ 20th floor पर एंड टू एंड, और तब मैं आपसे कहती हूँ कि आपको इस एंड से चलकर उस एंड तक पहुंचना है, तो क्या तब भी आप उतना कंफर्टेबली यस कहेंगे चलने के लिए? शायद नहीं, और शायद मना ही कर देंगे, क्योंकि जैसे ही मैंने आपसे कहा 20th floor और आपने अपने आप को उस वुडन ब्लॉक के एक एंड पर देखा, तो क्या थॉट्स मन में आए? माय गॉड, इतनी हाइट, अगर बैलेंस बिगड़ गया तो, अगर नीचे गिर गए तो, अगर हाथ पैर टूट गए तो, अगर हम मर गए तो, और अगर बाय चांस नहीं मरे तो उसके बाद कैसी लाइफ होगी? जैसे ही सेकंड में ये थॉट्स आते हैं तो हम क्या कहते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते। करना क्या था? चलना ही तो था। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप वही व्यक्ति हैं, करना भी आपको वही है, वही वुडन ब्लॉक है, और मैं गारंटी लेती हूँ कि वो 20th floor पर भी आपके वजन से टूटेगा नहीं। लेकिन फिर भी जैसे ही मैंने वो हाइट आपको दिखाई, जो आपके थॉट्स थे वो चेंज हुए। कैसे थॉट्स आए? डर के, अनसर्टेनिटी के, इनसिक्योरिटी के, इम्बैलेंस के, फ्यूचर में लाइफ कैसी होगी। वो जैसे ही आपको सीन्स दिखाई दिए तो आपके मन में डर बैठ गया, रिस्क, और आपने कहा कि नहीं, मैं रिस्क नहीं लूंगा, अगर ऐसा हो गया तो जैसे ही डाउट और फियर आया, हमारी एफिशिएंसी, एक सिंपल से काम के लिए सिर्फ आपको चलना ही था, लेकिन उसके लिए भी आपने मना कर दिया। ऐसा ही लाइफ में होता है। ये तो छोटा सा स्किल था। जब चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं तो हमारे सारे स्किल्स रखे रह जाते हैं और हम उसको कर नहीं पाते उन सिचुएशंस में। इसीलिए कहा जाता है, नोइंग अ स्किल इज इम्पॉर्टेंट बट बींग एबल टू परफॉर्म दैट स्किल एट द राइट टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। चीजों को हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन जीवन में जब चैलेंजेस आते हैं उस टाइम हम उसको यूज कर पाए, नेगेटिविटी के टाइम भी हम उसमें पॉजिटिविटी देख पाए, चैलेंजेस को भी अपॉर्चुनिटीज का रूप दे पाए, चारों तरफ हलचल हो उसमें मन को स्टेबल रख पाए, ये है स्पिरिचुअल स्किल्स। क्या आपको नहीं लगता आज के इस टाइम में जहां हम बाकी सारी स्किल डेवलपमेंट पे इतना काम करते हैं, ये वाली स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फाउंडेशन है। अगर मन कमजोर पड़ गया तो बाकी कोई स्किल हमारे किसी काम नहीं आएगी। तो आज के इस सेशन में हम खास इस बात पे बात करेंगे कि हम इन स्पिरिचुअल स्किल्स को कैसे डेवलप करें, कैसे सीखें और फिर अपने जीवन में उनको यूज कर पाए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल स्किल है, यहां पर भी जैसे हमने इस केस में भी देखा कि मन कमजोर पड़ गया। जैसे ही मन में एक नेगेटिव थॉट आया, हमारी एफिशिएंसी कम हो गई। अगर थॉट ही इसका बेसिस है, एक नेगेटिव थॉट आने से हमारी एफिशिएंसी कम हो सकती है, तो क्या एक पॉजिटिव थॉट आने से एफिशिएंसी बढ़ नहीं सकती? लेकिन जब हम चाहें तब पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर पाए, ऐसा हम नहीं कर पाते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि मन कमजोर पड़ गया है। एक वीक माइंड वीक थॉट्स क्रिएट करेगा और एक पावरफुल माइंड पावरफुल थॉट्स क्रिएट करेगा। तो पहली जरूरत है मन को पावरफुल बनाने की, और उसके लिए आज मैं आपको एक कोड देने जा रही हूं जो आपको सफलता के शिखर तक ले जा सकता है, और वो कोड है पॉज। इसको पॉज क्यों कहा? क्योंकि एक हमने कहानी जरूर सुनी होगी आपने भी, लकड़हारे की, वो कहानी जो पूरे हफ्ते इतनी मेहनत करता है, पेड़ पे पेड़ काटता चला जाता है, लकड़ियां काटता चला जाता है, लेकिन डे बाय डे उसकी एफिशिएंसी कम होती चली जाती है। और एक हफ्ते बाद जब निरीक्षण किया जाता है तो पाया जाता है वो क्यों एफिशिएंसी कम हुई, क्योंकि उसने मेहनत तो बहुत करी लेकिन समय नहीं दिया, रुका नहीं अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने के लिए। तो इस टाइम बहुत जरूरत है कि थोड़ा सा हम अपनी भागती जिंदगी में रुकें। वैसे ही COVID-19 ने हमें रुकने का मौका भी दिया है, और अच्छा है हमने इस मौके को एक अपॉर्चुनिटी लेकर अपने लिए समय निकाला, जीवन में छोटा सा पॉज, क्योंकि ये पॉज वो टाइम है जब हम अपनी स्पिरिचुअल स्किल्स को डेवलप भी करेंगे, शार्पन भी करेंगे, और उसके बाद जब हम अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे तो वो हमारी जैसे बिल्कुल उड़ती कला होगी, उड़ कर जाएंगे, बहुत जल्दी उसको हम पा सकेंगे। तो इस पॉज का पहला पी है पॉजिटिव इनटेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कहते हैं ना, आपके मेडिकल फील्ड में भी कहते हैं कि अगर शरीर को तंदुरुस्त रखना है तो अच्छा भोजन देना चाहिए, हेल्दी नरिशमेंट बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। उसी तरीके से अगर मन को पावरफुल रखना है तो मन को भी हेल्दी नरिशमेंट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है ना, मन के लिए ही कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। फिजिकल फूड जो हम लेते हैं उसका भी मन पर असर होता है, और साथ साथ मन का भोजन क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। मन का भोजन है जो भी हम अपने चारों तरफ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे मन का भोजन है। अब आज हम चेक करें कि हम सारा दिन अपने मन को कैसा भोजन देते हैं, किस टाइप की इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं। हम सब जानते हैं आज जब चारों तरफ नेगेटिविटी का माहौल है, डर का माहौल है, एंग्जाइटी का माहौल है, स्ट्रेस का माहौल है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, जॉब्स कम हो रही हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल सब बंद हैं, फ्यूचर अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, ऐसे में चारों तरफ से इंफॉर्मेशन किस टाइप की आ रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है, जहां लगता है कि अभी अगला महीना सब ठीक हो जाएगा लेकिन फिर लगता है कि फिर कहीं से कोई बात सुनते हैं कि नहीं अभी तो अगले 2 महीने तक और प्रिकॉशन लेना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है? और जब सारा दिन हम ऐसा कंजम्पशन लेंगे अपने मन के लिए, अपने मन को ऐसा भोजन देंगे, तो मन क्या बनेगा? पावरफुल बनेगा? नहीं। इसलिए ठीक है, अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन ओवर कंजम्पशन इन चीजों की ना करें। पता होना चाहिए क्या चल रहा है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एक एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूंगी कि मॉर्निंग का समय जो हमारा टीवी चैनल से शुरू होता है या न्यूज़पेपर से शुरू होता है, उस टाइम हमें अपने मन को कुछ पॉजिटिव देना चाहिए। चाहे हम मेडिटेट करें, परमात्मा से कनेक्शन लगाएं, उसमें हम कुछ पॉजिटिव लें, या हम कुछ पॉजिटिव कंटेंट पढ़ें, जैसे हम ब्रह्मा कुमारीज में हमारे लाइफस्टाइल में ही इंक्लूडेड है कि हम दुनिया के बारे में पहले नहीं जानते, पहले हम कुछ ऐसा पॉजिटिव पढ़ते हैं, सेंटर पे जाते हैं, या इस टाइम कोविड के टाइम तो नहीं जा रहे लेकिन अब ध्यान रखते हैं जो भी वहां से कंटेंट आता है, स्पिरिचुअल कंटेंट, सबसे पहले हम वो भोजन अपने मन को देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मन जो होता है वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह काम करता है, जो आप उसके अंदर दे देंगे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर सारा दिन चाहे आप कितने भी चैलेंजेस में जाएं वो उसी मोड में काम करता है जो उसने सुबह सुबह भोजन लिया है, है ना। कहते भी है ना कि जो सुबह सुबह नाश्ता अच्छा करता है तो उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहती है सारा दिन काम करने की। तो मन को भी पावरफुल भोजन देना है। एंड मेडिकल स्टूडेंट्स होने के नाते या जो भी आप प्रोफेशन में है, मैं कहना चाहूंगी कि हम ऐसी इंफॉर्मेशन लें, ऐसे लोगों के बारे में जाने जो अपने जीवन में सक्सेसफुल हुए, जो आज हमारे सामने आदर्श हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको सफलता बनी बनाई मिली। दे वर नॉट बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून इन देयर माउथ और अ लाइफ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत चैलेंजेस फेस करे, और उन चैलेंजेस को उन्होंने कौन से स्किल्स के थ्रू, कौन से डिसिप्लिन के थ्रू, क्या क्या उन्होंने सहन किया, किस किस तरीके से उन चैलेंजेस को पार किया और अपनी लाइफ के लिए वो बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी बना पाए, इन सब बातों को जब हम जानेंगे, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज को पढ़ेंगे, तो हमको रियलिटी पता लगेगी कि उन्होंने भी कितने चैलेंजेस का सामना किया है, और हमें तरीके पता लगेंगे, वो क्वालिटीज पता लगेंगी जो हमको अपने अंदर डेवलप करनी है। तो केवल फिजिकल स्किल्स की बात नहीं है, लेकिन कौन कौन सी क्वालिटीज उस टाइम के चैलेंजेस को दूर करने के लिए या पार करने के लिए उन्होंने यूज करी, ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सक्सेसफुल लोगों के बारे में जाने, और मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहूंगी कि कई बार हमें आसपास से या बचपन से भी किसी ने कुछ कहा, हमने उसको स्वीकार लिया, अपने बिलीफ सिस्टम को ही बना लिया कि हाँ हम तो ये नहीं कर सकते, मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है। ऐसा नहीं है, आप जब चाहें अपने अंदर किसी भी उम्र में कोई भी क्वालिटी, कोई भी स्किल डेवलप कर सकते हैं। और इसके लिए मैं कहूंगी हमेशा एक पॉजिटिव, एक ग्रोथ माइंडसेट अपना रखें, किसी के कहने से रुक नहीं जाएं, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो आपने सेट किया है। एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पर सुनाना चाहूंगी आपको कि दो फ्रॉग थे, खेलते खेलते वो एक कुएं में, गहरे कुएं में गिर गए, और जब पूरे उनके फ्रॉग के समाज ने देखा, सब इकट्ठे हुए, तो उन्होंने कहा अरे इसमें से तो कोई आज तक नहीं निकला है, ये दोनों तो बेचारे अब मरे की मरे। लेकिन उसमें से जो एक फ्रॉग था, उसने तो जैसे ही ये सुना, वो मेहनत बड़ी देर से कर रहा था, लेकिन ये सुनने के बाद वो एक कोने में बैठ गया, उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ अब तो मेरा मरने का टाइम आ गया। लेकिन जो दूसरा फ्रॉग था वो निरंतर कोशिश करता रहा, और सारा दिन कोशिश करने के बाद वो लगभग 1 फुट की ऊंचाई तक जा सका, और उसको थोड़ा सा समझ में आया कि ग्रिप कैसे बनानी है, और करते करते 3 दिन बाद स्ट्रगल करते करते वो फ्रॉग बाहर निकल आया, जबकि दूसरा फ्रॉग तो दूसरे दिन ही मर गया था। जब वो बाहर निकला तो बाकी सारे फ्रॉग्स बहुत खुश हुए कि अरे भाई तुमने तो कमाल कर दिया, असंभव को संभव कर दिया, ऐसा कैसे हो गया, तुम कैसा कर पाए। तो उसका एक दोस्त जो ये सारी बात देख रहा था, उसने कहा अरे इससे क्या पूछते हो, इसको तो सुना ही नहीं दे रहा है, तुम जो कह रहे हो वो इसको पता ही नहीं तुम क्या पूछ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि उस फ्रॉग ने कोई नेगेटिविटी सुनी ही नहीं और स्वीकार ही नहीं करी, इसलिए उसको ये बिलीफ सिस्टम ही नहीं था उसके अंदर कि इसमें से बाहर नहीं निकला जा सकता, और वो कर पाया। और जहां दूसरे ने नेगेटिविटी को कंज्यूम कर लिया तो वो नहीं कर पाया। इसीलिए बहुत जरूरी है हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, और वो बनेंगे कैसे, जब आप ध्यान देकर, अटेंशन देकर पॉजिटिव इनटेक पर ही फोकस करेंगे, उसी को स्वीकार करेंगे। और अब हम चलते हैं पॉज के ए पर, अटेंशन। यस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, जहां पर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, वहां पर अपनी अटेंशन को सेफ गार्ड करना, क्योंकि जिस चीज पर हम अटेंशन देंगे, जिस चीज पर हम फोकस करेंगे, वैसा ही हमारा एक्सपीरियंस बन जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको इसमें देना चाहूंगी कि एक लेडी थी, वो अपने घर में सफाई कर रही थी, और सफाई करते करते सोच रही थी क्या है, सारा काम मुझे करना पड़ता है, सफाई भी करनी पड़ती है, तो घर में आज शाम को मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाना भी बनाना है, इतनी बड़ी मेरी फैमिली है, और इतने सारे बिल्स भी पे करने हैं, सब कुछ मुझे करना पड़ता है, मेरी लाइफ कितनी हेक्टिक है, किसी भी काम के लिए टाइम नहीं मिलता। इस तरीके से वो क्रिप कर रही थी, और उसको बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग नेचर थी उसकी। तो करते करते उसने टेबल पर, अपनी बेटी की टेबल पर देखा कि उसकी होमवर्क कॉपी रखी थी, तो उसका मन किया कि क्या लिखा हुआ है मैं देखती हूँ। उसकी बेटी को काम मिला था स्कूल में कि टर्निंग नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, मतलब कि लाइफ में आपके जो भी नेगेटिव हुआ उसको आप पॉजिटिव बनाओ। तो उसको क्यूरियोसिटी हुई कि मैं देखूं मेरी बेटी ने क्या लिखा है, तो उसने ऐसे लिखा था कि आज मुझे बहुत कड़वी दवाई खानी पड़ी जुखाम के लिए, बट आई एम हैप्पी कि मैंने वो खाई, तो उससे नाउ आई एम फीलिंग बेटर। आज मेरा मोबाइल फोन नीचे गिरकर स्क्रीन क्रैश हो गई, बट आई एम हैप्पी कि उसके वजह से मैंने नॉर्मल कीपैड फोन यूज किया, और मैं अपनी फ्रेंड से बात करी एज कंपेयर टू रोज जो मैं टेक्सटिंग करती हूँ। आज मेरे स्कूल में एक सरप्राइज टेस्ट हुआ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि मार्क्स खराब आए, बट स्टिल आई एम हैप्पी, मुझे ये पता लगा कि मुझे कहाँ कहाँ पर और काम करने की जरूरत है। तो जब उसकी मदर ने ये बातें पढ़ी तो एकदम से उनको लगा कि हाँ मेरे पास भी खुश होने के, थैंकफुल होने के बहुत वजह है। और फिर उसने रिफ्लेक्ट बैक किया Then she shifted her attention. हाँ, अगर इतने सारे bills मुझे pay करने पड़ते हैं, तो इसका मतलब कि I should be thankful for all the facilities that I am getting. अगर मुझे पूरे घर के लिए खाना बनाना पड़ता है, relatives के लिए खाना बनाना पड़ता है, I should be thankful. I have a family. मुझे पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है, but I can be thankful because इतना बड़ा घर है मेरे पास. मैं सारा दिन इतना बिजी रहती हूँ, तो आई शुड बी थैंकफुल कि अच्छा है मेरे पास लाइफ में बिजी करने के लिए काम है. तो जैसे ही उसने अटेंशन शिफ्ट करी, तो उसका जो उस मोमेंट का एक्सपीरियंस था, क्योंकि थॉट्स चेंज हुए, अटेंशन शिफ्ट करने से थॉट्स चेंज हुए, फीलिंग्स चेंज हुई, और उसका उस मोमेंट का एक्सपीरियंस चेंज हो गया. इसीलिए कहते हैं, वेयर एवर माई अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेर एवर माई एनर्जी फ्लोज लाइफ ग्रोज. मैं किन चीजों पर अटेंशन देती हूँ, मेरी एनर्जी भी वहीं पर जाती है और वही चीज बढ़ती है. अगर मैं पॉजिटिविटी देखती हूँ, तो मेरे मन में पॉजिटिविटी बढ़ती है, मेरा एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव बनते हैं. और वहीं अगर मैं उन्हीं सिचुएशंस में नेगेटिव को देखती हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंसेस भी वैसे ही बनते हैं और मेरा मूड भी फिर वैसे ही बनता है. इसलिए बहुत जरूरी है, there are two kinds of things happening around, one which are not in my control and one which are in my control. Bahar situation kaisi hai wo mere control mein nahi hai, lekin uske response mein main kaise thoughts create karun jisse mera focus theek rahe, main apne kaam par dhyan de sakun, wo mere haath mein hai, right? So स्टॉप पेइंग अटेंशन टू दोज थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, क्योंकि आप उन पे अटेंशन देकर भी कुछ नहीं कर सकते. स्टार्ट पेइंग अटेंशन और स्टार्ट शिफ्टिंग योर अटेंशन टू द थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, योर थॉट्स, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स एंड देयर बाय योर एक्सपीरियंसेस. सो अपने अटेंशन को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है, बिकॉज हु इज द मास्टर ऑफ माई अटेंशन. I am the master of my attention. ना, मैं क्या सोचना चाहती हूँ, मैं कैसा देखना चाहती हूँ, that all depends on me. और जितना हम अपनी attention को safeguard करेंगे, उतना हम अपने मन के मालिक बनते चले जाएंगे. क्योंकि आज के time में ये बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमारा pause का U जो है, that is use self control. अपने ऊपर हमारा कंट्रोल हो. हमने दुनिया को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करी, या हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वो चेंज हो तो मेरी लाइफ की सिचुएशन बेटर हो, वो ऐसा करें तो मैं फिर ये काम कर सकती हूँ, मेरे को अगर लाइफ में ऐसा मिला होता तो मेरे लिए सक्सेस पाना बहुत इजी हो जाता. लेकिन फोकस हमको अब कहाँ लेकर जाना है, अपने कंट्रोल को अपने ऊपर ट्राई करना है. मेरा मन मेरे कितने कंट्रोल में है, हाँ, मेरे थॉट्स जो हैं क्या वो मेरे कंट्रोल में है. क्योंकि हमने जाना कि हमारे थॉट्स जो हैं वही फाउंडेशन है मेरे मन की स्थिति के. आज हम देखिए छोटी छोटी बातों पे ये कहते रहते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा ये काम करने का, मेरा मन नहीं कर रहा बाहर जाने का, मेरा मन नहीं कर रहा सुबह उठने का, मेरा मन तो कर रहा है आज पिज्जा खाने का, मेरा मन नहीं कर रहा कि आज अभी इतनी जल्दी सो जाए. कितना हम मन के वश हैं, जो हमारा मन कहता है वो हम करते हैं. और मन क्या कहता है, जो हमारी कर्मेंद्रियों को अच्छा लगता है, हमारी कर्मेंद्रियों को जहां प्लेजर मिलता है वो मन करता है, भले ही वो चाहे गलत हो. आंखों को वो देखना अच्छा लगता है जो देखना नहीं चाहिए, हाँ, जबान को वो टेस्ट करना अच्छा लगता है जो हमारी हेल्थ के लिए खराब है. और मन फिर क्या करता है, इन्हीं चीजों के प्रति आकर्षित होता है. तो क्या हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, या मन को कंट्रोल करने से सफलता का क्या रिलेशन है, यही स्टडी प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल ने 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में करी कुछ छोटे बच्चों पर. 4 से 6 साल के बच्चे उन्होंने गैदर करे और उन सब के सामने उनकी फेवरेट कैंडी मार्शमेलो या कोई चॉकलेट रखी जो उनको पसंद थी, और उनको कहा कि देखो ये तुम्हारी चॉकलेट या कैंडी है, तुम इसे खा सकते हो, लेकिन एक और ऑप्शन है कि अगर तुम थोड़ी देर वेट करोगे तो तुम्हें 2 मिलेंगी. मैं थोड़ी देर होकर आता हूँ, 15-20 मिनट में आता हूँ. अगर तब तक आप इसको नहीं खाओगे, इसको अपने सामने ही रखोगे, तो आपको एक और चॉकलेट मिलेगी या मार्शमेलो मिलेगी. तो सभी बच्चों को ऐसे इंस्ट्रक्शंस देके वो कमरे से बाहर चले गए, और थोड़ी देर बाद आफ्टर 15 मिनट्स जब वो वापस आए, तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे बच्चों ने तो they couldn't resist their temptation to eat their favorite chocolate or candy, और उन्होंने उसको खा ली. लेकिन कुछ बच्चे थे जो ईगरली वेट कर रहे थे कि कब टाइम पूरा होगा और प्रोफेसर वापस आएंगे और उनके लिए एक और लेकर आएंगे। इस एक्सपेरिमेंट को करते समय उन्होंने ये जो बच्चे थे उनके रिस्पॉन्स को भी रिकॉर्ड किया और साथ साथ उनको मॉनिटर भी किया अगले काफी सालों तक, अगले 15-20 सालों तक उनकी लाइफ को मॉनिटर किया। और उन्होंने देखा कि जो बच्चे 4 साल की उम्र में अपने मन को कंट्रोल कर पाए थे 15 मिनट के लिए, जो वेट कर पाए थे, वो बच्चे एज कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन दे वर मोर सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड ऑफ देयर लाइफ। उनके सैट स्कोर्स बेटर थे, उनके रिलेशनशिप्स बेटर थे, दे वर एबल टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, और उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्होंने ज्यादा प्रोग्रेस करी थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से, जिसको उन्होंने कई सालों तक कंटिन्यू रखा, उन्होंने इसी निष्कर्ष पे पहुंचे कि जीवन में सफलता पाने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, मन को संयमित करना, मन को डिसिप्लिन करना बहुत बहुत जरूरी है। और वास्तव में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो मन हमको कंट्रोल करता रहेगा, मन हमको डांस कराता रहेगा, जो वो चाहेगा हम वो करेंगे, हालांकि हमारे अंदर आज समझ है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं कि मोबाइल का या स्क्रीन टाइम को थोड़ा लिमिट करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम सारा टाइम, एक तो मजबूरी है कि हमें अभी टेक्नोलॉजी पर हम ज्यादा डिपेंडेंट हैं, लेकिन जितना हम डिपेंडेंट हैं उससे ज्यादा हम उसको मिसयूज कर रहे हैं। यूज करना एक बात है, टेक्नोलॉजी बनी ही इसलिए है कि जिससे हमारी लाइफ आसान बन सके, लेकिन आज हम देखते हैं कि जैसे ये मोबाइल हमारे लिए नहीं बना, हम इस मोबाइल के लिए बन गए, हम इसकी इसको सर्विस दे रहे हैं कि हम इतने घंटे इसको अटेंड करेंगे ही करेंगे, जो चीजें देखने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है, वो भी सारा दिन जैसे एक एडिक्शन सी हो गई है। क्यों हो रही है ये, कैसे एडिक्शन बनती है? क्योंकि हम अपने मन को, जब पहली बार मन फिसला, मन में थॉट आया, चलो ये देख लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, हमने उसको कंट्रोल नहीं करा। जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर उसको कभी सिखाया ही नहीं कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना है, वो डांस करते करते घूमते उछलते कूदते खाता है और मम्मी उसके पीछे पीछे घूम कर खिलाती है, तो उसको क्या कभी बैठना आएगा? या वो एक जगह टेबल पे बैठ के पढ़ेगा? नहीं कर सकता। और फिर बाद में उसको ट्रेनिंग देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या उसे हम एक्सपेक्ट करें कि आराम से बैठे। इसी तरह हमारा मन है, हमने भी बहुत सी हैबिट्स ऐसी अपने मन की डेवलप कर ली हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये कंट्रोल रखना भी इम्पोर्टेंट है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट यही नहीं पता था कि हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अरे मन किसका है? मेरा है ना, तो मेरा मन मेरा कहना नहीं माने। बात यह है, समझ सबको है, लेकिन मन के कंट्रोल को कभी हमने प्रैक्टिस नहीं करा। तो जिस तरीके से हमने उसको डिस्ट्रैक्ट होने की प्रैक्टिस दी, हम उसको कॉन्सेंट्रेट करने की भी प्रैक्टिस दे सकते हैं। ये भी हमारे ऊपर है। शेड्यूल करें, कुछ डिसिप्लिन्स बनाएं अपने लिए कि हाँ, सुबह के 60 मिनट्स जो हैं, या रात को सोने से पहले के 60 मिनट्स जो हैं, वो मुझे मोबाइल नहीं यूज करना है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। बाकी सभी चीजों पे हम देखें, सुबह उठने का समय, रात को सोने का समय, हम कुछ अपने लिए शेड्यूल सेट करें। ऐसा नहीं कि कभी कोई समय, कभी कोई समय, जैसा मन चाहता है वैसा हम कर रहे हैं। मन को भी तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको भी तो बताना पड़ेगा, नहीं मेरा जो लक्ष्य है उसके लिए ये सही है। तो इसलिए मन पे आपका कंट्रोल होता चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, ये कंट्रोल हम कभी भी डेवलप कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमने आज तक नहीं इस बात को समझा तो आज हम नहीं कर सकते, अभी भी हम कर सकते हैं। तो अपने लिए कुछ डिसिप्लिन बनाए और उसको कंसिस्टेंसी के साथ, हम पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उसको फॉलो करें। चाहे छोटे छोटे डिसिप्लिन बनाए, फिर डे बाय डे थोड़ा 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 उसको हम महसूस करेंगे, हमारा कंट्रोल बेटर होता जा रहा है। और फिर हमारा पॉज का एस, सी योरसेल्फ एज सक्सेसफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन अचीविंग सक्सेस। चाहे आपका लक्ष्य छोटा है या आपका लक्ष्य बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम पाना चाहते हैं उसको बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ, बिना किसी डाउट के, हम देखें कि हमने वो पा लिया है, हम वैसा बन गए हैं, हमने वो अचीव कर लिया है। आप कहेंगे ये कहीं ख्याली पुलाव बनाना तो नहीं हो जाएगा? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप हार्डवर्क नहीं करें, हार्डवर्क करें, लेकिन साथ साथ अपने आप को विजुलाइज भी करें कि हम वो पा रहे हैं, पा चुके हैं। आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे आप अपने गोल को जल्दी पा लेंगे। क्यों पालेंगे, उसके पीछे की साइंस क्या है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड विजुअलाइजेशन। अपने आप को सफल होते देखने से सफलता हमें जल्दी और आसानी से कैसे मिल सकती है, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी रिसर्च बताती हूँ। कुछ पेशेंट्स जो पैरालिसिस के पेशेंट्स थे, उनके ऊपर ये रिसर्च करी गई। उन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, एक ग्रुप को केवल दवाई दी गई, मेडिसिन दी गई, और दूसरे ग्रुप को दवाई के साथ साथ ये भी कहा गया कि आपको विजुलाइज करना है अपने मन में कि जैसे आप अपनी नॉर्मल लाइफ जीते थे, जैसे आप अपने हाथ को उठाते थे, जैसे आप उससे जो जो काम करते थे, बहुत डीपली उसको आप विजुलाइज करो कि आप अभी भी कर पा रहे हो। और कुछ मिनट उनको ये एक्सरसाइज कराई जाती थी, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, मेंटल एक्सरसाइज, कि वो इस तरीके से उनको विजुलाइजेशन करना है, डीप विजुलाइजेशन। और कुछ समय बाद जब दोनों ग्रुप्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया तो देखा गया जो पहला ग्रुप केवल मेडिसिन ले रहा था उसके अंदर कम इम्प्रूवमेंट थी एज कम्पेयर टू द अदर ग्रुप जो साथ साथ विजुलाइजेशन भी कर रहा था। और फिर जब उनसे कहा गया कि वो अपने हाथ को उठाकर देखें, थोड़ा महसूस करें, तो वो कर पाए, उनकी फिंगर्स हिल रही थी और वो कर पा रहे थे। और फिर धीरे धीरे फिजियोथेरेपी के साथ जब ये विजुअलाइजेशन कंटिन्यू किया गया तो उनकी जो प्रोग्रेस थी वो बहुत फास्ट थी। अब सोचने वाली बात है, दोनों केसेस में फर्क क्या था, सिर्फ एक विजुलाइजेशन का ही फर्क था, बाकी फिजियोथेरेपी और मेडिसिन तो सब साथ साथ चली रही थी। तो विजुलाइजेशन करने से क्या हमारे ब्रेन के अंदर कोई चेंजेस आते हैं? क्योंकि एक्चुअल में पैरालिसिस में क्या होता है कि जो भी, मान लीजिए हाथ में पैरालिसिस आ गया, तो अब जो हाथ उठाने के लिए सेट ऑफ न्यूरॉन्स थे हमारे ब्रेन के अंदर, वो डैमेज हो जाते हैं, वो टिश्यूज जो होते हैं वो डैमेज हो जाने से, उनके अंदर ब्लड फ्लो ना जाने से डेड पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन कमांड नहीं दे पाता उस तरीके से हाथ हिलाने के लिए। लेकिन जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो विजुअलाइजेशन से हमारे ब्रेन के अंदर वो चेंजेस आते हैं। और इसके पीछे साइंस क्या है, बिकॉज ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट व्हाट यू आर इमेजिनिंग और व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। आप अपने मन में विजुलाइज कर रहे हैं या आप उस काम को एक्चुअल में कर रहे हैं, ब्रेन इस बात में भेद नहीं कर सकता, वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। वो इमेजिनेशन के टाइम भी, विजुलाइजेशन के टाइम भी ब्रेन को ऐसा ही लगता है कि आप एक्चुअल में कर रहे हैं, और वो उस टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देता है। तो जब वो पेशेंट्स बार बार विजुलाइज करते थे इस तरीके से, तो उनके ब्रेन के वो न्यूरॉन्स, वो टिश्यूज, वो सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल थे उस मोमेंट के लिए, उसमें ब्लड फ्लो होने लगा धीरे धीरे। और वो ब्लड फ्लो होने से वो प्रोग्रेस जल्दी करने लगे, क्योंकि ब्रेन को ये नहीं समझ में आता कि फिजियोथेरेपी से किया जा रहा है, एफर्ट करके किया जा रहा है, या विजुलाइजेशन से किया जा रहा है, नहीं। तो इसी तरीके से इस साइंस को बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन भी यूज करते हैं। जब वो फील्ड में जाते हैं तो उसके लिए फिजिकल प्रैक्टिस तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ मेंटल प्रैक्टिस भी करते हैं, माइंड ट्रेनिंग भी लेते हैं, जिसके अंदर वो विजुलाइज करते हैं कि जब वो फील्ड में जाएंगे। बड़े बड़े एथलीट्स भी जब वो जाते हैं तो उससे पहले विजुलाइज करते हैं एक पल को, कैसे वो फील्ड में दौड़ेंगे, कितनी तेज दौड़ेंगे, कितने टाइम में कवर करेंगे। ये एक एक डिटेल के साथ जब विजुलाइज करते हैं तो उनके ब्रेन में वो जो न्यूरॉन्स होते हैं जो उन सब मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसी को कहते हैं, ब्रेन की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रेन टू चेंज इट्स स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ आवर थॉट्स एंड एक्शंस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। चाहे हम सोच के करते हैं, चाहे हम उसको एक्शन के थ्रू करते हैं, हमारे ब्रेन में चेंजेस आते हैं। इसीलिए जो भी हमने अपना लक्ष्य रखा है, जो भी हमको उसके लिए स्किल्स चाहिए, अगर हम पॉजिटिवली अपने आप को विजुलाइज करते हैं कि मैं कर पा रही हूँ। मैं आपको अगर अपनी लाइफ का एग्जाम्पल बताऊं तो मैंने इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज किया। मैं बचपन से बहुत डरपोक थी, बहुत मुझे डर लगता था, स्टेज से बहुत डर लगता था, सबके सामने बोलने से बहुत डर लगता था। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी मैं नहीं बोल सकती, मैं नहीं कर सकती, और मैं अपने आप को ऐसे ही देखती थी। अगले दिन अगर प्राइज लेने के लिए भी स्टेज पे जाना होता था तो रात भर सोचती रहती थी, मैं जब जाऊंगी पूरा स्कूल देखेगा, मैं कांपने लग जाऊंगी। तो मैं अपने आप को वैसे ही विजुअलाइज करती थी बिना इस साइंस को जाने, और ऐसा ही होता था। तो बहुत घबराहट होती थी उससे पहले, छोटा सा सिर्फ उठ के स्टेज तक जाना है वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता था। लेकिन 10 ईयर्स बैक जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई और यहाँ आने के बाद मुझे ये सारी साइंस पता लगी कि हमारी सोच का क्या असर होता है हमारी बॉडी पर, हमारे ब्रेन पर, हमारे पोटेंशियल पर, हाउ वी प्रोग्राम आर बॉडी थ्रू आर थॉट्स। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात बताई जो कि मैं कहूंगी ये लॉ है जीवन का, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। जैसा आप यहाँ सोचेंगे वैसे मन की स्थिति बन जाएगी। आप यहाँ कमजोरी के थॉट्स लाएंगे तो आपका मन कमजोर हो जाएगा, आप कमजोरी फील करेंगे। आप अगर अपने अंदर पावरफुल थॉट्स क्रिएट करेंगे तो आपके मन की स्थिति बड़ी पावरफुल हो जाएगी। इसीलिए कहा जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसा चित्र वैसा चरित्र। जैसा आप अपने मन में अपने लिए चित्र बनाएंगे वैसे कैरेक्टर्स आपके अंदर आते जाएंगे, वैसे आपके अंदर क्वालिटीज डेवलप होती जाएगी। और मैंने जब इस साइंस को समझ के अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, मैंने अपने आप को विजुअलाइज करना शुरू किया कि हाँ मैं जब स्टेज पे जा रही हूँ तो पूरे कॉन्फिडेंस से जा रही हूँ, कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, आंखों में आंखें मिलाकर बोल रही हूँ, अपनी बॉडी लैंग्वेज को विजुअलाइज किया, अपने आप को फ्लॉलेसली बोलते हुए देखा, तो मैंने देखा मेरे अंदर वो निर्भयता की क्वालिटीज अपने आप आती चली गई। और मेरा डर जो बचपन का डर था वो मैंने इतने बड़े होने के बाद उस डर को दूर किया। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस साइंस को समझना। अगर बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन को, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को इसकी जरूरत है या वो इसको यूज करके अपने जीवन में सफलता पाते हैं, तो क्या हमें अपने आप को ये साइंस समझकर इसको यूज नहीं करना चाहिए अपनी सफलता को पाने के लिए? मैं तो एक छोटी सी बात आपको कहूंगी कि अगर सफलता तक जाने के, अपने लक्ष्य तक जाने के 4 कदम हैं, तो 3 कदम तो हार्डवर्क के हैं, लेकिन अगर इस तरह पॉजिटिवली विजुलाइज करेंगे आप अपनी सफलता को तो लक्ष्य आपकी तरफ 1 कदम आएगा। और अगर हम नेगेटिवली विजुलाइज करेंगे, जो मोस्ट ऑफ अस हम करते ही हैं, जब हम लक्ष्य रखते हैं मेहनत तो बहुत करते हैं, 3 कदम वाली मेहनत तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन नेगेटिव सोच के कारण, नेगेटिव विजुलाइजेशन के कारण अपने आप को फेल होते देखते हैं, नहीं कर पाते हुए देखते हैं, उससे हम 1 कदम पीछे चले जाते हैं। इसीलिए लक्ष्य बहुत लोग रखते हैं लेकिन अपने ऊपर डाउट होने के कारण अपने लक्ष्य से खुद को ही दूर कर लेते हैं। तो आज से अपना वो चित्र बनाएं, देखें कि आप जब सफल होंगे तो कैसे होंगे, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, क्या खुशी होगी, उस खुशी के एहसास में रहें, तो आप देखिएगा आपके अंदर वो स्किल्स आते चले जाएंगे। हार्डवर्क जरूर करना है लेकिन साथ साथ ये अपना पॉजिटिव इमेज भी बनाना है। और अब आता है हमारा पॉज का ई, एनर्जाइज योर सेल्फ। यस, खुद को शक्ति देना, एनर्जाइज करना। आज देखिए हम मोबाइल को भी चार्ज करते हैं और हमारी बैटरी कई बार वीक हो जाती है। अपने आप को हम कैसे चार्जिंग देते, उसके लिए पहले समझना है व्हाट इज सेल्फ, क्या है सेल्फ। तो हम क्या कहते हैं, हम अपने आप को ही कहते हैं हाँ ये है सेल्फ, लेकिन हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन वर्ड जो आया है वो ह्यूमस से आया, मिट्टी है, और बीइंग है वो चैतन्य शक्ति जो सारा काम करती है। इसीलिए तो आप देखिए ना, मेडिकल फील्ड में भी आप किसी को, जिसको पेशेंट कहते हैं, जिसकी फाइल बनाते हैं, तो उस पे आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो फिर क्या कहते हैं, कहते हैं बॉडी को ले जाएंगे। लोग भी कहते हैं हाँ आप तो मिट्टी रह गई, तो ह्यूमन रह गया बस, लेकिन बींग चला गया। तो वो बींग जो था वही सेल्फ है, वो मैं खुद हूँ। तो हम कौन है अगर सेल्फ की बात करें तो वो कौन है, वो चैतन्य शक्ति जो लाइट फॉर्म में, इसीलिए सेल्फ की डेफिनेशन क्या है, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, इन लाइट फॉर्म, वेरी सटल लाइट फॉर्म। उसको एम्पावर करना है, शरीर को एम्पावर करना तो हमें आता है लेकिन सेल्फ को एम्पावर करना नहीं आता। अब हम अगर यहाँ पर कट करके देखें, बॉडी को कट करके देखें, तो सेल्फ हमें वो सोल नहीं दिखाई देगा, जैसे कि ट्यूबलाइट होती है, हाँ जलती हुई ट्यूबलाइट को अगर आप बीच में से काटेंगे तो क्या अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी दिखेगी? नहीं दिखेगी, लेकिन जानते हैं कि अगर ट्यूबलाइट जल रही है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। उसी तरीके से आत्मा शरीर में है, इसकी इंडिकेशन क्या है कि दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं। तो इसका मतलब सफलता किसको चाहिए? सेल्फ को चाहिए, सोल को चाहिए, उस चैतन्य शक्ति को चाहिए, लेकिन लेती है वो इस बॉडी के थ्रू, बॉडी के थ्रू काम करती है, लेकिन सफलता चाहिए आत्मा को। तो एनर्जाइज हमको किसको करना है? सेल्फ को एनर्जाइज करना है, उस बीइंग को एनर्जाइज करना है, आत्मा को एनर्जाइज करना है, क्योंकि आत्मा जो है वो चैतन्य शक्ति है और वही परमात्मा की संतान है। जब मुझे ये ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन में जाने पर पता लगा कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की विशेष संतान हूँ और मेरे अंदर वो सारी शक्तियाँ हैं, क्वालिटीज हैं जो सफल होने के लिए चाहिए, तो मैंने दीदी से यही प्रश्न पूछा कि तो दीदी मैं इतना डरती क्यों हूँ? अगर मैं परमात्मा की संतान हूँ तो उन शक्तियों को क्यों नहीं फील करती? तो दीदी ने यही कहा कि आप हमेशा दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हो कि वो कितना अच्छा करते हैं, वो कितना अच्छा करते हैं, मैं वैसा नहीं कर सकती, लेकिन आप अपने में बिल्कुल यूनिक हो। क्या आप जैसा कोई दूसरा पूरी दुनिया में है एग्जैक्टली जो सेम हो? मैंने कहा दो लोग तो कभी एग्जैक्टली सेम होते नहीं। तो उन्होंने यही कहा, इसीलिए जो दूसरे कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो आप कर सकते हो वो भी कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा मैं बहुत यूनिक हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, अपने अंदर हमेशा अपनी यूनिकनेस को देखें। भगवान ने हम सबको बहुत स्पेशल बनाया है, इसलिए नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन। सिर्फ अपने आप के स्वरूप को देखकर अपनी क्वालिटीज के बारे में सोचें तो वो बढ़ती चली जाएंगी, और यही हम राजयोग मेडिटेशन में करते हैं। तो अब कुछ देर के लिए हम अपनी क्वालिटीज को एक्सपीरियंस करेंगे, अपनी उस सफलता के मोमेंट्स को हम एक्सपीरियंस करेंगे। सिट बैक कंफर्टेबली, यू मे क्लोज योर आईज इफ यू विश और लेट देम ओपन। सब बातों से अपना ध्यान हटाएं, स्वयं पर ले आए। और अपने आप को देखें, आई एम माई ओन यूनिक सेल्फ, स्पेशल, क्रिएटिव एंड वंडरफुल। मैं परमात्मा की बहुत सुंदर रचना हूँ, यूनिक हूँ, सबसे हटकर हूँ। God has sent me on earth for a special purpose, and that purpose is to take positivity and powers from Almighty and give it to everybody I meet. I am strong, able and calm. I radiate love and happiness to everybody I meet. मैं हमेशा खुश रहती हूँ और औरों को भी खुशी देती हूँ। My thoughts are under my control. My thoughts are my creation. और मैं जैसा चाहूं वैसा क्रिएट करती हूं। मेरा मन बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए मेरे विचार बहुत शक्तिशाली है। आई कॉन्शियसली चूज and create positive, powerful, and elevated thoughts. Success is my birthright. Safalta mera janmasiddh adhikar hai. Anubhav kare safalta ke us moment ko jis pal aap apne lakshy ko pa rahe hain. वो खुशी, वो एहसास हर पल मेरे साथ है. आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे. मेरी फिजिकल स्किल्स, मेरी प्रोफेशनल स्किल्स, मेरी स्पिरिचुअल स्किल्स डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही हैं. I accept myself unconditionally. I started loving myself. चाहे मेरे अंदर कुछ weaknesses भी हैं, लेकिन मेरा attention अपनी strengths को बढ़ाने पर है. और मैं day by day अपनी strengths को बढ़ाती जा रही हूँ, जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है. आई नो आई कैन डू इट. आई एम प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन. मैं उस सर्वशक्तिवान परमात्मा की गोद में सुरक्षित हूँ. सदा उसकी ब्लेसिंग्स की छत्र छाया के नीचे हूँ. हर कर्म में वो मेरा साथी है, इसलिए मेरा सफल होना निश्चित है. ओम शांति. तो ये पॉज, छोटा सा पॉज आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगा, जहां पी है पॉजिटिव इनटेक, A, divert your attention to the right thing. U, use your self-control. Man jeete, jagat jeet. And S, for seeing yourself as successful. Sada apne ko safal hote dekhen. And E, energize yourself. Apne saath connect huye, apni qualities ko emerge kariye, to aapko safalta se koi door nahi kar sakta. जो चाहेंगे वो अपने जीवन में पाएंगे. तो उन स्किल्स के साथ इन स्पिरिचुअल स्किल्स को भी बढ़ाते जाएं. ओम शांति.
ओम शांति. प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज एवं मेडिकल विंग, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, RERF आपके लिए लेकर आए हैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स. आइए इस अंतर मन की यात्रा में हमारे साथ जुड़े. राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आगामी सत्र सोमवार से गुरुवार, मंडे से थर्सडे शाम 7 बजे से 8 बजे तक मेडिकल विंग के फेसबुक पेज facebook.com/medicalwinghq/live व मेडिकल विंग के यूट्यूब चैनल youtube.com/bkmedicalwing/live. ध्यान रहे, इसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण होगा. व्हाट्सएप 8619937031.
Awakening to a new way of living.